पृष्ठ संख्या 198, जयपुर दरबार का गुणीजन खाना। जयपुर राज्य के कलाकारों का एक दिलचस्प इतिहास है और वहां का गुणीजन खाना उनकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज भी जयपुर दरबार के राजकीय पुस्तकालय में गुणीजन खाने का इतिहास सुरक्षित है, जो जयपुर घराने की परंपरा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक तथ्यानुसार सन 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह नगर अथवा जयनगर की स्थापना हुई। इसके पूर्व वहां की राजधानी आमेर थी। राजा मानसिंह सन 1590 से 1615 तक के राज्य में काल में ध्रुपद गायकी एवं पखावज वादन का आमेर में काफी प्रचार था। उनके भाई राजा माधो सिंह भी कला संस्कृति के पोषक थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में तो गुणीजन खाने की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। महाराज स्वयं कवि एवं गायक थे। उनके गुरु उस्ताद चांद खां गुणीजन खाने के प्रधान कलाकार थे। सवाई प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी सवाई राम सिंह का शासनकाल गुणीजन खाने का स्वर्णकाल माना जाता है। वे उस्ताद रजब अली खां के शिष्य थे। जयपुर का ऐतिहासिक गुणीजन खाना देश भर में अपने आप में एक था। देश के सैकड़ों कलाकार जयपुर दरबार के गुणीजन खाने में आदर सम्मान पाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मुख्यतः दिल्ली के बहुतेरे कलाकार आए थे। राज दरबार में गुणीजन खाने के कलाकारों की महफिल तो होती ही रहती थी। साल भर में 3-4 बड़े संगीत महोत्सव भी हुआ करते थे। उनके उपरांत वहां के विद्वान कलाकारों द्वारा संगीत विषयक पुस्तकों की रचनाएं भी हुआ करती थीं। राजा माधो सिंह के आश्रित खान देशवासी संगीतज्ञ कवि पुंडरीक विठल के ने राजमंजरी की रचना वहां पर ही की थी। सवाई जय सिंह के राज्यकाल में रागों की कई चित्रावलियां बनाई गई थीं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना करवाई थी, जिनमें श्री राधा गोविंद संगीत सार 7 अध्याय अनुपम कृति है। संगीत राग कल्पद्रुम की रचना सवाई राम सिंह के समय में हुई थी। आज भी जयपुर के दरबारी पोथी खाने के खास मुहर विभाग में संग्रहित संगीत शास्त्र की दुर्लभ पोथियां एवं पांडुलिपियां वहां के राजाओं के संगीत प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है। सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद अल्लादिया खान ने अपनी आत्मकथा में जयपुर के गुणीजन खाने की काफी प्रशंसा की है तथा वहां के अनेक आश्रित गायक वादकों के नाम भी गिनाए हैं। बहियों के अनुसार राम सिंह द्वितीय के समय में गुणीजन खाने में 99 कलाकार थे। उनमें 4 कथक नर्तक, 22 सारंगी वादक, 45 गायिकाएं तथा नर्तकियां, 17 पखावजी, 5 रसधारी मंडली वाले, 6 करताली तथा साजों को ठीक करने वालों का भी उल्लेख है। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के पुत्र के समय के गुणीजन खाने के कलाकारों की जो सूची हमें प्राप्त हुई है उसमें 124 कलाकारों के नाम गिनाए गए हैं। इनमें से 15 पखावजी के नाम मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 199 जो इस प्रकार हैं: छुट्टन खां, हिम्मत खां, हिदायत अली, इनायत अली, मदद अली, कुतुब अली, किरूपे, मीर अली, मीर बख्श, भुवनु चौथू, राम कमर, सबल दास, अजीजुद्दीन, जगन्नाथ प्रसाद पारीक। जगन्नाथ पारीक को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने सम्मानित किया था। जयपुर का पखावज घराना अर्थात नाथ द्वारा की पखावज परंपरा। जयपुर का पखावज घराना सदियों पुराना है, जिसका प्रारंभ आमेर से हुआ है। इस घराने के वंशज श्री पुरुषोत्तम दास के अनुसार इसका प्रारंभ दादाजी तुलसीदास के द्वारा हुआ था। उनके पौत्र हालू जी ने इस क्षेत्र में सविशेष कीर्ति अर्जित की थी। अतः हालू जी का नाम तथा इस परंपरा की प्रसिद्धि उनके समय में विशेष रूप से हुई। यद्यपि आमेर में हालू जी के नाम से बनी हालू जी की पुल आज खंडहर बन चुकी है, तथापि जयपुर शहर में आज भी हालू का मोहल्ला है, जिसमें इस घर के वंशज एवं दूसरे अनेक गायक वादक रहते हैं। हालू का मोहल्ला में रहने वाले आज के प्रमुख कलाकारों में नारायण जी, मांगी जी, बद्री पखाव जी, जोरावर सिंह ग्वालियर वाले नहीं आदि के नाम प्रमुख हैं। जयपुर घराने में अनेक कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी रहे होते रहे, जिनमें हालू जी के पौत्र राम रूप रूप राम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे अपने युग के उत्कृष्ट पखावजी थे, जो वे जोधपुर दरबार के आश्रित कलाकार के रूप में वर्षों तक वहां रहे। वहां पहाड़ सिंह पखावजी से उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। यही कारण है कि उनके पुत्र बल्लभदास को पहाड़ सिंह जैसे समर्थ एवं विद्वान पखावजी से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला था। जीवन के अंतिम वर्षों में पंडित रूपराम अपने युवा पुत्र बल्लभदास के साथ जोधपुर छोड़कर नाथ द्वारा आकर बस गए थे और भगवान दास श्री नाथ जी की सेवा में जीवन के अंतिम समय तक रत रहे। यहीं से इस घराने की परंपरा में नवीन मोड़ आया। श्री राम रूप के बाद इस घराने में जितने भी कलाकार हुए, वे सब के सब श्री ठाकुर जी के सेवक तथा नाथ द्वारा के निवासी बने रहे। रूप राम के पुत्र बल्लभ दास, पौत्र शंकरलाल तथा खेमलाल, प्रपौत्र घनश्याम दास तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम कभी सभी वंश परंपरागत नाथ द्वारा में ठाकुर जी की सेवा एवं पखावज कला की साधना करते आ रहे हैं। यही कारण है कि इस घराने को जयपुर के साथ साथ नाथ द्वारा के पखावज परंपरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज भी पुरुषोत्तम दास के भांजे रामकृष्ण तथा श्यामलाल एवं नाती प्रकाश चंद्र नाथ द्वारा में रहकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। पुरुषोत्तम दास पखावजी दिल्ली के कथक केंद्र में भी अध्यापक रहे, अतः नाथ द्वारा दिल्ली तथा दूसरे शहरों में भी उनके अनेक शिष्य फैले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 200। जयपुर में तबला पखावज के अन्य कलाकार। जयपुर राज्य के कुणिजन खाने में सर्वश्री उस्ताद हिदायत अली, मदत अली, इनायत अली तथा कुतुब अली जैसे कुछ पखावजी थे, जो पखावज के साथ साथ तबले में भी निपुण थे। मदत अली तथा कुतुब अली के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, किंतु उस्ताद हिदायत अली के शिष्यों में जयपुर के मौला बख्श तथा कल्लू खां के नाम मिलते हैं, जिनके शिष्य भुल्लन खां वर्षों तक आकाशवाणी जयपुर के कलाकार थे। इनायत अली के पुत्र गमरू खां अच्छे तबला वादक थे, जिनके पुत्र खुर्शीद अली करांची रेडियो के कलाकार रहे। टोंक राजस्थान के अमीर मोहम्मद खां जयपुर के उल्लेखनीय तबला वादक हैं। उनके परिवार में तबले की शिक्षा परंपरागत रूप से चली आ रही है। उनके पिता गुलाम मोहम्मद खां अच्छे कलाकार थे, जिन्होंने सोनीपत वाले उस्ताद गुलाम मोहम्मद करम बख्श से तथा नाना ममदू से दीर्घ शिक्षा पाई थी। गुलाम मोहम्मद करम बख्श दिल्ली घराने के थे, जिनके पुत्र अब्बू खां जिलवानी तथा पौत्र बशीर खां भी अच्छे कलाकार माने गए। बशीर खां पाकिस्तान में रहे। जयपुर के आकाशवाणी केंद्र में अमीर मोहम्मद खां कलाकार रहे। जयपुर के मूलचंद तबला वादक वहां के एक अन्य कलाकार हैं। उनके पुत्र हरि नारायण पवार वहां के महाविद्यालय में अध्यापक हैं। जयपुर घराने की कथक नृत्य परंपरा। जयपुर अपने कथक नृत्य के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। कथक पंडित हनुमान प्रसाद, उनके तीनों पुत्र पंडित मोहनलाल, पंडित चिरंजीलाल तथा पंडित नारायण लाल इस एवं इसी घराने से संबंधित पंडित जियालाल, पंडित सुंदर प्रसाद तथा पंडित नारायण प्रसाद नृत्य में तो प्रवीण थे। तबला वादक वादन में भी अत्यंत निष्णात माने जाते थे। कथक घराने में नृत्य के साथ साथ तबले के नियमबद्ध शिक्षा आज भी दी जाती है, जिसके फलस्वरूप नृत्यकार तबला वादन में भी प्रवीण प्राप्त करते हैं। पंडित जयलाल जी ने अपने कथक घराने के कलाकारों के उपरांत फर्रुखाबाद के सुप्रसिद्ध उस्ताद अमान अली खां, उस्ताद हजरुद्दीन खां तथा रामगण शेखावादी के उस्ताद सूखे खां से भी तबला सीखा था। यही कारण है कि वे नृत्य के उपरांत तबले के भी धुरंधर कलाकार थे। नृत्य की प्रधानता के कारण जयपुर में तबले का दीर्घ प्रचार एवं उसके प्रति विशेष रुचि देखने को मिलती है। आधुनिक समय में इस घराने के कथक चिरंजी लाल के शिष्य हिदायत खां माने हुए तबला वादक हैं। हिदायत खां दिल्ली के मूल निवासी हैं, किंतु उनके नाना उस्ताद मौला बख्श घाउसी जयपुर के गुणिजन खाने के गवैये थे, अतः वे बचपन से ही जयपुर आकर बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हिदायत खां ने चिरंजी लाल के उपरांत अपने ताऊ अशरफ खां, उस्ताद आजीम खां जावरे वाले तथा कथक के दूसरे गुणिजन खाने से भी तालीम ली। कथक घराने के उस्तादों से सीखकर अनेक कुशल तबला वादक प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें पंडित जियालाल के शिष्य प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव इलाहाबाद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पृष्ठ संख्या 201, 13वां, जोधपुर दरबार की परंपरा। जयपुर की भांति जोधपुर के राजाओं में भी कला के प्रति स्नेह था। हम नाथ द्वारा की परंपरा में देख चुके हैं कि रूपराम पखावजी नाथ द्वारा में अस्थाई होने के पूर्व जोधपुर दरबार के आश्रित कलाकार थे। वे विशेष रूप से जोधपुर के राजा द्वारा जयपुर से आमंत्रित किए गए थे। रूपराम के समकालीन पहाड़ सिंह पखावजी का भी उल्लेख मिलता है। वे अपने युग के प्रखर विद्वान पखावज वादक थे तथा दिल्ली की परंपरा से संबंधित थे और जोधपुर के कलाप्रिय राजाओं के आमंत्रण से वहां आकर बसे थे। उनके पुत्र जौहार सिंह भी अच्छे कलाकार माने गए, जो मृत्यु पर्यंत जोधपुर दरबार के आश्रित कलाकार बने रहे। इसी परंपरा के गुलाब सिंह तथा उनके पुत्र कुबेर सिंह एक एवं गोविंद सिंह बड़ौदा दरबार के कलावंत कारखाने के कलाकार रहे। 14, उदयपुर की परंपरा। राजस्थान के उदयपुर नगर में उस्ताद अब्दुल हाफिज खां रहते थे। वे इंदौर के उस्ताद रहमान खां, उस्ताद भूरे खां तथा उस्ताद जहांगीर खां के शिष्य थे। अपने आप में वे तबला के भंडार थे। महफिलों को जीतने के उपरांत उन्होंने मुक्त हृदय से विद्यादान भी किया था। आज उदयपुर शहर में जो कुछ तबला मौजूद है वह उस्ताद हाफिज खां की देन है। उनके प्रमुख शिष्यों में सर्वश्री चतुरलाल, अजीज खां, योगेश नारायण दत्त्या, नारायण राय, राम नारायण बानावत, जगदीश चंद्र वर्मा, राखीलाल आदि प्रमुख हैं। उदयपुर के दूसरे कलाकारों में उस्ताद हिदायत खां के शिष्य श्री हरिओम वर्मा का नाम भी आ जाता है। बीकानेर एवं चूरू की परंपरा। बीकानेर का चूरू जिला कथक नृत्यकारों का मूल स्थान माना जाता है। चूरू में पैदा हुए, पले और सीखे अनेक कथक नर्तकों ने देश के कोने कोने में जयपुर के कथक घराने के नाम को रोशन किया है। पंडित मोहनलाल और पंडित जियालाल के पूर्वज चूरू जिला गांव के क्रमशः गोपालपुरा और कनवारी के निवासी थे। यह बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता है। बीकानेर के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर जयचंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार चूरू में जीवन खां और सूखे खां नाम के दो भाई तबला वादन में अत्यंत निपुण थे। यद्यपि वे किसी घराने की शिष्य परंपरा से संबंधित थे उसकी जानकारी नहीं मिलती, तथापि इसमें दो मत नहीं कि उनकी कला दक्षता बेमिसाल थी। कहते हैं कि सूखे खां से सुप्रसिद्ध नृत्याचार्य पंडित जियालाल ने तबले की तालीम ली। सूखे खां के भतीजे और जीवन खां के पुत्र जुगल खां भी तबले का अच्छा ज्ञान रखते थे। जुगल खां के शिष्यों में मुरारी लाल, कोई उन्हें किशन लाल कहते हैं, का नाम प्रमुख है। पृष्ठ संख्या 202। तदुपरांत बीकानेर चूरू विस्तार में जमाल खां तबला वादक का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है, जिनसे वहां की सुप्रसिद्ध कलाकार अगड़े खां ने तबला सीखा था। बीकानेर में हाकू जी नाम के एक तबला वादक भी हुए, जो बाद में नाटक और फिल्मों में बजाने लगे। उन्होंने रणजीत मूवी टोन में नौकरी की थी। वे लगी लड़ी के सिद्धहस्त कलाकार माने जाते थे। हिंदी फिल्मों के पिछली पीढ़ी के सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक गुलाम मोहम्मद खां का नाम संगीतकारों एवं संगीत रसिकों में आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे उच्च कोटि के संगीतकार और संगीत निर्देशक तो थे ही, तबला वादन में भी अत्यंत निपुणता रखते थे। उन्होंने फरुखाबाद घराने के उस्ताद सलारी मियां और उस्ताद मुनीर खां के शिष्य उस्ताद गुलाम हुसैन से तबले की दीर्घ तालीम ली थी। कहा जाता है कि यदि गुलाम मोहम्मद फिल्मों में नहीं गए होते तो कदाचित वे देश के श्रेष्ठ तबला उस्तादों में से एक माने जाते। वे तबले के उस्ताद उपरांत ढोलक वादन में भी प्रवीण थे। उनके छोटे भाई अब्दुल करीम खां भी खूबसूरत और मुलायम तबला बजाते थे। उन्होंने भी अपने बड़े भाई की तरह उस्ताद गुलाम हुसैन से ही तबले की तालीम ली। वे आजीवन फिल्मों में से ही जुड़े रहे। बीकानेर राज में तबले के उपरांत नक्कारा और ढोलक के शास्त्रीय वादन की परंपरा भी फैली है, जिसमें कासू जी का नाम प्रमुख है। कासू जी नक्कारा वादन में अत्यंत निपुण थे और कभी कभी जंजीर से भी नक्कारा बजा लेते थे। उनका देहांत इस सदी के आरंभ में हुआ। कहते हैं कि कासू जी जैसा खूबसूरत नक्कारा वादक अब कदाचित ही सुनने को मिले। उनके पुत्र शमसुद्दीन नक्कारा और सारंगी दोनों में प्रवीण थे। शमसुद्दीन के पुत्र चिराग खां फिल्मों में नक्कारा बजाते थे। 15वां, गुजरात सौराष्ट्र की दरबारी परंपरा। भारत में अनेक अंग्रेजों के शासन काल में अनेक छोटी मोटी रियासतों के राजा महाराजा नवाब ठाकुरों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार संगीत एवं संगीतकारों को आश्रय दिया, जिनमें गुजरात तथा सौराष्ट्र के राजवाड़ों का भी नाम आता है। सन 1800 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक के 150 वर्ष के काल में इन देशी राज्यों में शिल्प साहित्य चित्र एवं संगीत कला का जो चतुर्मुख विकास हुआ है वह अनन्य है। यद्यपि कला के क्षेत्र में गायकवाड़ राजाओं का बड़ोदरा राज्य सिरमौर माना जाता है, फिर भी जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर, मोरबी, धर्मपुर, बांसदा, संत रामपुर, पालनपुर, ईडर, देवगढ़, बारिया, गोधरा, लुड़ावड़, बढ़वाल, मांगलोर, चूड़ा, साड़ंद, पाटड़, कच्छ इत्यादि गुजरात सौराष्ट्र की छोटी छोटी रियासतों के राजाओं ने भी संगीत कला तथा उसके कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। पृष्ठ संख्या 203। 16, गुजरात के बड़ौदा राज्य का सांगीतिक इतिहास। संगीत के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण में बड़ौदा राज्य का स्थान महत्वपूर्ण है। वहां के श्रीमंत फतेह सिंह राव गायकवाड़, श्रीमंत खांडे राव गायकवाड़ तथा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ जैसे कला प्रेमी राजाओं ने संगीत एवं संगीतकारों को जो आदर सम्मान दिया है, उसके कारण उनका दरबार देश भर के कलाकारों एवं विद्वानों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। कहते हैं कि खांडे राव जी महाराज के समय में बड़ौदा दरबार में सैकड़ों की संख्या में गायन, वादन, नर्तन तथा लोक संगीत के कलाकार विद्यमान थे। संगीत के क्षेत्र में क्रांति कही जा सकी, ऐसी दो प्रमुख बातें वहां के दरबार में हुई थी जो निम्नलिखित हैं। पहला, देश में शास्त्रीय संगीत का सर्वप्रथम विद्यालय सन 1886 ईस्वी में स्थापना। दूसरा, अखिल भारतीय संगीत परिषद का आयोजन। शास्त्रीय संगीत विद्यालय की स्थापना। शास्त्रीय संगीत के शिक्षण हेतु संगीत के प्रथम विद्यालय की स्थापना बड़ौदा में सन 1886 ईस्वी के फरवरी माह में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा हुई। इसकी स्थापना के पश्चात लाहौर का गांधर्व महाविद्यालय सन 1901 ईस्वी, ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यालय सन 1918 ईस्वी, लखनऊ का मोरिस म्यूजिक कॉलेज सन 1925 ईस्वी तथा पुणे का भारत गायन समाज अस्तित्व में आया। इन संगीत विद्यालयों में गायन, तंतुवादन, पखावज एवं तबला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। आरंभ काल में विद्यालय का संचालन उस्ताद मौला बख्श नामक एक विद्वान को सौंपा गया था। उन्हीं दिनों वहां से संगीत की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें तबला वादन के क्षेत्र में उस्ताद उस्मान खां सुल्तान खां कृत ताल पद्धति सन 1888 ईस्वी पुस्तक उल्लेखनीय है। आज बड़ौदा का महाराजा सयाजी राव म्यूजिक कॉलेज अपने ढंग का एक अनोखा संगीत प्रशिक्षण केंद्र है, जो सन 1886 ईस्वी से में स्थापित प्राथमिक संगीत विद्यालय का विकसित रूप है। उस विद्यालय के प्रथम प्राचार्य का मानद स्थान विख्यात वीणा वादक एवं शास्त्रज्ञ पंडित हीरजी भाई आर डॉक्टर ने करीब 25 वर्ष तक सुशोभित किया था। पृष्ठ संख्या 204। अखिल भारतीय संगीत परिषद का आयोजन। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वप्रथम संगीत सम्मेलन सन 1916 ईस्वी में श्रीमंत सया जीराव गायकवाड़ की अध्यक्षता एवं संरक्षण में बड़ोदरा में आयोजित हुआ। संगीत की ऐतिहासिक इतिहास में इस परिषद का आयोजन गौरवपूर्ण घटना है। इसे आधुनिक युग में संगीतोत्थान का प्रथम चरण कहा जा सकता है। इस परिषद में देश भर के गुणीजन, विद्वान, संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी, राजा महाराजाओं एवं रसिक जनता ने भाग लिया। इसका कुशल संचालन संगीत जगत के समर्थ विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। इस ऐतिहासिक संगीत परिषद में संगीत विषयक अनेक प्रश्नों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। परिषद की योजना और ठहरावों का निर्देशन करते हुए प्रोफेसर आरसी मेहता अपनी गुजराती पुस्तक में लिखते हैं, छेलाम सौ वर्ष नी प्रथम अखिल हिंद परिषद राजाश्रय बड़ोदरा मा सन 1916 मा भराई ए संगीत ना इतिहास माम एक घड़ी ज महत्वनी वस्तु तरीके सांभरवी जरूरी छे। आ परिषद मा हिंद भर मा थी गायक वाड़ो वादको आव्या हता, ने पंडित भातखंडे नी दुर्वणी नीचे संगीत विषयक अनेक प्रश्नों छड़ाया हता। आजनी मध्यस्थ संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ए पोताना कार्य प्रदेश विषे जे आदर्शों सन्मुख राख्या छे तेमाम नाम महत्व नाम सघला आ पहेली परिषद नी योजना ने ठरावो मा जोई सकाय छे। कलावंत कारखाना। बड़ोदरा संगीत विभाग में राज्य की ओर से एक और भी महत्वपूर्ण विभाग चलाया चलता था, जो कलावंत कारखाने के नाम से प्रसिद्ध था। इस कलावंत कारखाने को आफ्ताबे मूसिकी उस्ताद फैयाज खां से लेकर भारत भर के करीब 150 कलारत्न सुशोभित करते थे। इस विभाग का संचालन सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित हीरजी भाई डॉक्टर करते थे। कलावंत कारखाने के इन कलाकारों ने गायन वादन के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के उपरांत अनेक शिष्य तैयार किए और इस तरह विद्या का यथेष्ट प्रचार किया। कलावंत कारखाने के तालवाद्य के कलाकारों में उस्ताद नासिर खां पखावजी बांदा, पंडित गंगाराम जी मृदंगाचार्य ब्रिज, उस्ताद करीम बख्श इंदौर, श्री गुलाब सिंह तथा उनके दो पुत्र कुबेर सिंह तथा गोविंद सिंह जोधपुर के नाम विशेष उल्लेखनीय है। उस्ताद नासिर खां पखावजी बांदा वर्षों तक बड़ोदरा दरबार के दरबारी कलाकार रहे। वे महाराज खांडेराव तथा महाराज सयाजी राव के दरबार के उत्कृष्ट कला रत्न थे। उन्होंने पखावज एवं तबले के अनेक शिष्य तैयार किए, जिनमें सर्वश्री कांता प्रसाद, हिम्मत राम बख्शी, विष्णुपंत जोशी, गणपत राव बसईकर, कृष्णराव लक्ष्मण सिलेदार तथा उनके पुत्र निसार हुसैन खां और पौत्र नजीर खां प्रमुख हैं। कांता प्रसाद जी की ख्याति भारत भर में प्रसिद्ध थी। श्री नरहर शंभुराव भावे ने उस्ताद नासिर खां की वादन शैली पर एक कलात्मक पुस्तक मराठी भाषा में तैयार की थी, जिसका नाम है मरहूम नासिर खां यांचा मृदंगबाज। पृष्ठ संख्या 205, 17, भावनगर। सौराष्ट्र के भावनगर राज्य के महाराजा भाव सिंह जी भी संगीत के रसिक एवं ज्ञाता थे, अतः उनके दरबार में भी कलाकारों का उचित सम्मान हुआ करता था। भावनगर के दरबारी कलाकार पंडित डाहियालाल शिवराम ने सन 1901 में संगीत कलाधर नामक एक वृहद ग्रंथ की गुजराती भाषा में रचना की थी, जिनमें गायन तथा तंतुवादन के अतिरिक्त ताल शास्त्र तथा विविध तालों के चक्र सहित विशद वर्णन मिलता है। 18, जामनगर। जामनगर के पंडित आदित्य राम जी का नाम पखावज के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। बलदेव शाह परंपरा के इस लोकप्रिय कलाकार को आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं और उनको गुजरात सौराष्ट्र का स्वामी हरिदास कहकर सम्मानित करते हैं। वैसे वे जूनागढ़ के निवासी थे और वहाँ के नवाब बहादुर खां के दरबारी कलाकार थे। पखावज वादन के साथ साथ वे कुशल गायक तथा संगीतादित्य नामक ग्रंथ के रचयिता भी थे। उन्होंने गिरनार के किसी सिद्ध योगी से पखावज वादन में अद्भुत योग्यता प्राप्त की थी। सन 1841 ईस्वी में वे जूनागढ़ छोड़कर जामनगर चले गए और अंत तक वहीं रहे। जामनगर के राजा जाम रणमल जी संगीत के बड़े प्रेमी थे तथा आदित्य राम जी को बहुत चाहते थे, अतः उनको दरबारी कलाकार के रूप में ही नहीं वरन राजगुरु के रूप में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। वे युवराज को संगीत शिक्षा देते थे। आदित्य राम जी ने अनेक शिष्य तैयार किए थे, जिनमें पंडित बलदेव शंकर भट्ट प्रमुख हैं। मुंबई के पंडित चतुर्भुज राठौड़ बलदेव शंकर भट्ट के ही शिष्य थे। गोवा के श्री सुब्बाराव अंकोलकर, जो सुप्रसिद्ध तबला नवाज उस्ताद मुनीर खां के शिष्य थे, अनेक वर्ष तक बलदेव शाह घराने के भी शागिर्द रहे। तदुपरांत बीकानेर की वैष्णव परंपरा के गोस्वामी गोविंद लाल जी ने भी आदित्य राम जी तथा उनके शिष्य लाल जी से सीखा था। जूनागढ़ में उस्ताद मंगलू खां नाम के एक पखावजी का नाम भी वहां के दरबारी कलाकार के रूप में मिलता है। गुजरात सौराष्ट्र के मंदिरों में फैली संगीत परंपराएं। राज परंपरा के उपरांत मंदिर परंपरा में भी गुजरात सौराष्ट्र में अनेक प्रतिभाशाली तबला वादक हुए हैं। ध्रुपद गायकी और पखावज की कला को गौरवान्वित करने का प्रयास सदैव वैष्णव संप्रदाय में होता आया है। देश भर के सुविख्यात कलाकार वैष्णव मंदिरों में कृष्ण मुरारी के समक्ष अपनी हाजिरी लगाने में गौरव का अनुभव करते हैं। पृष्ठ संख्या 206। इस क्षेत्र में सौराष्ट्र का पोरबंदर महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पोरबंदर के गोस्वामी घनश्याम लाल जी तथा उनके दो पुत्र गोस्वामी द्वारकेश लाल तथा गोस्वामी दामोदर लाल संगीत के रसिक आश्रयदाता एवं उच्च कलाकार थे। उन दिनों देश के सुप्रसिद्ध कलाकार पोरबंदर को कला का तीर्थ धाम मानते थे। आज भी वहां गोस्वामी द्वारकेश लाल के दो पुत्र गोस्वामी माधवराव तथा गोस्वामी रसिक राय संगीत एवं साहित्य के आश्रयदाता एवं स्वयं ज्ञाता के रूप में अपनी वंश परंपरागत प्रतिष्ठा निभा रहे हैं। हवेली परंपरा में भणौज के जगदीश मंदिर वाले मंगू भाई पखावजी, हालोल के जीवनलाल पखावजी तथा डाकोर के ज्येष्ठ राम पखावजी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाना पानसे घराने के उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री गोविंद राव बुरहानपुरकर वर्षों तक अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध साराभाई परिवार में रहे थे। श्री अंबालाल साराभाई की सुपुत्री श्रीमती गीता बहन पंडित बुरहानपुरकर से पखावज सीखा करती थी। तदुपरांत अहमदाबाद के तबला वादक पंडित शंकरलाल नायक तथा भड़ौच के पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के भाई श्री रमेश चंद्र ठाकुर तबला तरंग वादन में प्रसिद्ध थे।